मुख्य समाचारों में, उप प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस का कहना है कि उन्होंने एक लीक टेक्स्ट संदेश में स्कॉट मॉरिसन को पाखंडी और झूठा कहने के लिए माफी मांगने के बाद त्याग पत्र देने की बात की थी। एबोरिजिनल झंडा अब लहराएगा हार्बर ब्रिज पर और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कोच जस्टिन लैंगर ने दिया तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। उप प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस का कहना है कि उन्होंने पूर्व लिबरल ब्रिटनी हिगिन्स के लिए लीक हुए टेक्स्ट संदेश में स्कॉट मॉरिसन को एक पाखंडी और झूठा कहने के लिए माफी मांगने के बाद त्याग पत्र देने की बात की थी। एक अनाम तीसरे पक्ष को श्री जॉयस के संदेश में कहा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर कोट कभी भरोसा नहीं किया अनकोट और कोट नापसंद किया कि कैसे उन्होंने सच्चाई को झूठ में बदल दिया अनकोट। इस संदेश को 22 मार्च 2021 में भेजा गया था जब वो एक बैक बेंचर थे। सुश्री हिगिन्स ने इस सप्ताह मीडिया आउटलेट्स के साथ संदेश साझा किया जब उप प्रधानमंत्री ने श्री मॉरिसन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक अनाम कैबिनेट सहयोगी को फटकार लगाई थी। श्री जॉयस का कहना है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से माफी मांगी है।
When it came to light a couple of days ago, I rang the Prime Minister immediately. I apologized. He accepted my apology. I offered my resignation, and he did not accept my resignation. And that in itself is a statement of a person of greater character. That is not one of a person of any form of vindictiveness.
एक बयान में श्री मॉरिसन ने श्री जॉयस की माफी को स्वीकार किया और कहा कि पिछले साल पेशवर और व्यक्तिगत रूप से नेशनल्स लीडर श्री जॉयस एक अलग मना स्थिति में थे। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीसी ने उप प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस से त्याग पत्र देने की मांग की है। उनका कहना है कि श्री जॉयस ने आधे दशक से अधिक समय तक कैबिनेट में काम किया था और इसके बाद ही लीक हुए संदेशों में प्रधानमंत्री के कोट एक पाखंडी और झूठे अनकोट होने की टिप्पणी की थी। श्री अल्बनीसी का कहना है कि सरकार असफलता और फूट से भरी हुई है।
It's a shambles which isn't looking after the interests of Australians because they're obsessed by their internal hatreds and their dysfunction. The comments by Barnaby Joyce a year ago are just extraordinary. And it is untenable for Barnaby Joyce to continue to be Deputy Prime Minister to Prime Minister Morrison when this is what he had to say.
New South Wales ke Premier Dominic Perrottet ne वृद्ध देखभाल में बूस्टर टीकाकरण दरों को बढ़ाने के लिए फेडरल सरकार को समर्थन की पेशकश की है। ये रक्षा मंत्री पीटर डाटन की टिप्पणियों के बाद है कि सेक्टर के स्टाफिंग संकट में मदद के लिए सैनिकों को वृद्ध देखभाल घरों में तैनात किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि चाहे कुछ वृद्ध देखभाल प्रदाताओं ने इस सहायता का स्वागत किया है, लेकिन रक्षाकर्मी एक शेडो वर्कफोर्स नहीं है। श्री पेरोटेट का कहना है कि यूं वृद्ध देखभाल फेडरल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स सरकार मदद के लिए जो भी कुछ कर सकती है वो करने के लिए तैयार है।
We know that the booster shots rate in aged care facilities is not where it should be. Now it's a very complex area as well. It's not easy, and as I've always said, any support the state can provide to assist the federal government, we will.
न्यू साउथ वेल्स ने आज 18 मौतें और 8,399 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं। वर्तमान में राज्य भर में अस्पतालों में 2,337 मरीज हैं, जिनमें से 152 गहन देखभाल में हैं। 28 दिसंबर के बाद ये पहला दिन है जब राज्य ने 10,000 से कम मामले दर्ज किए। इस बीच न्यू साउथ वेल्स के विपक्षी नेता क्रिस मिंस ने फेडरल सरकार से अंदरूनी कलह को रोकने और देश की स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। श्री मिंस ने कहा है कि ओमिक्रॉन लहर का लोगों की नौकरियों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसको नियंत्रित करने के लिए और अधिक योजना बनाने की आवश्यकता थी।
Politics can come and go, but we need to get these policy settings right. Very concerned the level of infighting within the Liberal Party is getting to a crisis level and occupying everybody's time and effort when the effort needs to be on the people of New South Wales and Australia.
क्वींसलैंड में 21 मौतें दर्ज की गई हैं, जो महामारी के दौरान सबसे अधिक दैनिक टैली है। अस्पताल में वहां 727 लोग हैं और आईसीयू में 46। राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जॉन गैराट का कहना है कि मौतें चिंता का कारण हैं, क्योंकि इनमें से 4 को टीका नहीं लगा था और केवल 2 को बूस्टर मिला था।
It distresses me greatly every day to be reporting on older Queenslanders who are dying without having received the booster. That third dose of vaccine is absolutely critical in protecting us, particularly older people, from more severe disease, hospitalization and death.
विक्टोरिया में कोविड-19 से संबंधित 41 मौतों की सूचना है और राज्य में 7,810 नए मामले दर्ज किए गए। अस्पतालों में संख्या घटकर 687 हो गई है। तस्मानिया ने 483 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं, वहां कोई भी मौत दर्ज नहीं हुई है। सिडनी हार्बर ब्रिज पर एबोरिजिनल झंडा स्थायी रूप से फहराया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटेट का कहना है कि ये जितनी जल्दी हो सके होगा और सरकार कुछ समय से इसके लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले सलाह मिली थी झंडा फहराने में 2 साल लगेंगे, लेकिन इसमें तेजी लाई जाएगी।
In the 1920s, it took 9 years to build the harbour bridge, but apparently today it takes 2 years to put a flagpole on top of the harbour bridge. I mean, I'll climb up there myself and put it up if I need to. I mean, this is, the government departments need to work faster, and I can't see why it would take that long. And the new advice that I've received is that time frame can be expedited. I think it went down at 2 years and then to 6 months.
भारत में कोरोना के 1,27,000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे है और वर्तमान में रिकवरी रेट 95.64% पर है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का $1 अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 52.78 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट कोच जस्टिन लैंगर ने तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र दे दिया है। उनकी प्रबंधन कंपनी डायनामिक स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका त्यागपत्र शुक्रवार 4 फरवरी की रात क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक के बाद आया। लैंगर का अनुबंध जून में समाप्त होने वाला था और मुख्य कोच के रूप में उनके भविष्य के बारे में महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 11। सिडनी में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।